अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है।
शांति, सभी बोलो जोर से ओम शांति। मैं एक हमेशा स्कूल में जब भी जाता हूं, बच्चों को क्वेश्चन पूछता रहता हूं, आपको भी पूछेंगे। देखो आप लोग स्कूल में जाने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ, बोलो जोर से बोलना, सुधरते हैं। अच्छा टीवी देखने के बाद, सिनेमा देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं, जोर से बोलो बिगड़ते हैं। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो, जो जो सिनेमा टीवी देखते हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा आप लोगों ने अभी बोला था कि सिनेमा देखने पर बिगड़ते हैं, तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? सुधरना भी है, लेकिन दोनों भी लड्डू खा रहे हैं, सुधरने के भी खा रहे हैं और बिगड़ने के भी खा रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है पेशेंट को कहता है ये तुम्हारी खांसी है इसके लिए तुम ये दवाई लेना, लेकिन साथ में खट्टी चीजें दही वगैरह मत खाना, और पेशेंट क्या कर रहे हैं, दही भी खा रहे हैं और वो दवाई भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो खांसी अच्छी हो जाएगी? तो इसी तरह आज हम दोनों भी कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं सुधरने की बातें सीख के आते हैं, और टीवी देख करके मना बिगड़ने की भी कर रहे हैं और सुधरना है। भले सिनेमा देखो टीवी देखो, लेकिन उसमें से सकारात्मक बातें देखनी है। महात्मा गांधी ने भी एक बार सिनेमा देखा था, कौन सा, राजा हरिश्चंद्र, और उस राजा हरिश्चंद्र के सिनेमा का उनके ऊपर इतना परिणाम हो गया और उन्होंने महात्मा गांधी बन गए। इसी तरह सकारात्मक चीजें भले देखो, लेकिन अगर निगेटिव बातें देखेंगे आपके व्यवहार में निगेटिव बातें आएगी। कुछ दिन पहले मैं इधर जयपुर के पास गया था, तो मैंने एक अखबार में न्यूज पढ़ी थी, भास्कर पेपर में, एक दसवीं कक्षा का पीरियड चल रहा था, सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, और लास्ट में एक बच्चा बैठा था, उस बच्चे ने अपने थैले से एक पिस्तौल निकाल दिया और टीचर के ऊपर गोली झाड़ी और टीचर का वही मर्डर हो गया। जब उसके मां बाप को अखबार वालों ने पूछा गया कि बच्चे ने ऐसा गलत काम क्यों किया, तो उसके मम्मी पापा ने क्या जवाब दिया, ये बच्चा जब भी स्कूल से आता था टीवी देखता था और टीवी में भी फायरिंग करने वाला सिनेमा उसको बहुत अच्छा लगता था। उस बच्चे ने फायरिंग करने वाला सिनेमा बार बार देख करके क्या किया, फायरिंग की। तो इसी तरह अगर आप निगेटिव बातें देख रहे हैं, एक दिन आएगा आपके द्वारा निगेटिव कर्म जरूर होगा, इसीलिए हमें सकारात्मक बातें देखनी है। आज समाज बिगड़ा क्यों, समाज ऐसा नहीं था, लेकिन समाज को नकारात्मक बातें दिखाई गई, और जो सिनेमा में जो दिखाया जाता है रियल स्टोरी है। एक बार एक वीरप्पन डाकू था, सुना होगा, तो उसने एक राजकुमार, एक सिनेमा एक्टर था साउथ का, वो फाइटिंग करने में बड़ा फेमस था, उसको किडनैप करके जंगल में रख दिया, और दूसरे दिन अखबार वालों ने पेपर में न्यूज क्या डाली, ये वीरप्पन राजकुमार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों, क्योंकि वो अच्छी तरह फाइटिंग करता है। लेकिन 9 मास वीरप्पन ने उसको नहीं छोड़ा, क्यों फाइटिंग नहीं किया, क्योंकि वो केवल कैमरे के सामने फाइटिंग करता है, एक्चुअली फाइटिंग नहीं करता। इसी तरह जो भी निगेटिव बातें दिखाई जा रहे हैं ये वास्तव में नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, इन बातों को देख करके अपने जीवन को निगेटिव नहीं बनाना है। तो आज के जो बच्चे बिगड़ते हैं उसका कारण है सिनेमा और टीवी। जिस शिक्षा से बुद्धि भटकते वो शिक्षा नहीं है, जिसे मन चंचल हो जाता है, बुद्धि भटकती है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है, शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन में नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा कैसे अधूरी है। इसलिए इससे बचना है। तो पहली बात कौन सी सुनाई, अच्छे बच्चे बनने के लिए संगत अच्छी हो। दूसरी कौन सी बताई, सिनेमा टीवी से बच करके रहे। तीसरी बात आई, अच्छे बच्चे बनना है तो इसलिए हमें जीवन में कोई भी प्रकार का व्यसन और नशा नहीं करनी है। वैसे तो आप तो बाबा के ज्ञान में आते रहे बच्चे, आप लोग तो नशा नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कई बच्चे संघ में आकर के क्या करते हैं, नशा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल में गया था, एक छोटा सा बच्चा था, शायद 8वीं 9वीं कक्षा का होगा, और उसको यहां गले से नली डाल करके उसका बाप क्या कर रहा था, कुछ सब्जी का सूप बना करके उसमें पिला रहा था। तो मैंने उसके बाप को ऐसे पूछे, इसको क्या हुआ, कहा कि इसको मुख का कैंसर हुआ है, गुटखा खाता था, वो गुटखा खाने से उसको मुंह के अंदर कैंसर हुआ है और उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि गुटखा चबा चबा कर उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। तो देखो गुटखा खाने का कितना परिणाम होता है, इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। आज रावण रावण क्यों बनाता, रावण कौन था, ब्राह्मण था कुल का, लेकिन रावण ने इतने गलत काम किए उसका कारण क्या है, उसकी नशा। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है उसकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, वो क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उसका कोई संयम नहीं रहता और इसीलिए गलतियां होती हैं। इसीलिए हमें कभी भी नशा नहीं करना है। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है, देखो गुटखे के नाम में कितनी बुराई है। अगर गुटखे को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए गुटखा शब्द और उसमें से बीच का ट हटाया और फिर उस बात को पढ़ो, उस शब्द को क्या आएगा, हाँ जोर से बोलो क्या आएगा, हाँ कितनी बुरा अर्थ है, समझ में आया। तो जीवन भर में इस शब्द को याद रखना, तो कभी भी आपको गुटखा देखते ही आपको नफरत आएगी। इसलिए व्यसन नहीं करनी है। चौथी चीज है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसकी सीरियल है। पहली बात है संगत में आएंगे, फिर सिनेमा देखेंगे, फिर सिनेमा में देखेंगे वो अमिताभ बच्चन धुआं कैसे गोल गोल छोड़ता है, फिर वो करेंगे और उसके बाद फिर फैशन भी करेंगे। आज के युवा पीढ़ी बिगड़ी कुसंग, सिनेमा, व्यसन और चौथा फैशन। अच्छा फैशन क्यों करते हैं बताओ, आज दुनिया में फैशन क्यों किए जाते हैं, अच्छे दिखने के लिए। मतलब जो फैशन करता वो अच्छा है और फैशन करता वो अच्छा नहीं है। अच्छा राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा लगता है, राम। उन्होंने कौन सी फैशन किए, लाली पाउडर कुछ लगाइए तो क्यों अच्छा लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण है। समझे आपके ही क्लास में कोई काली सी लड़की है, वो समय पर स्कूल में आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, कभी लड़ती नहीं झगड़ती नहीं, तो सब उसको क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छी। अच्छी क्यों कहा, उसके अंदर गुण है। तो गुणों से व्यक्ति अच्छा बनता है, एक होता है इनर पर्सनालिटी और दूसरे होते हैं आउटर पर्सनालिटी। लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर है, बाह्य सौंदर्य बढ़ाने का हमारा ध्यान है। याद रखना है बाह्य श्रृंगार पतन की तरफ लेके जाता है और आंतरिक गुणों का श्रृंगार उन्नति की तरफ लेके जाता है। अगर हमने समझो बाहर का श्रृंगार करके दूसरे की बुद्धि को भटकाया तो ये पाप क्या या पुण्य क्या, पाप किया। अगर मेरे श्रृंगार से या मेरे कुछ पहनने से दूसरे की बुद्धि भटकी तो अगले जन्म में उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन बात का ध्यान रखना है। इसीलिए फैशन करो लेकिन किसके गुणों की। आजकल फैशन में क्या करते हैं, एक तो बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाओ लेकिन किसकी लगाओ, आत्मस्मृति की बिंदी लगाओ। सदा हमारी आत्मिक स्मृति की बिंदी लगी रहे, आत्मा भाई भाई इस स्मृति रहे, तो आप कितने अच्छे लगेंगे। जो आत्मस्मृति में रहता है उसका चेहरा बहुत अच्छा रहता है। और क्या करते हैं फैशन में, कंगन पहनते हैं। कंगन पहनो लेकिन किसके, दृढ़ता के कंगन पहनो। कोई भी कार्य करने का, कुछ सीखने का, पढ़ने का, जीवन में दृढ़ता चाहिए। जिसके जीवन में दृढ़ता है वो अच्छा है। तो कंगन कौन सा पहनेंगे, दृढ़ता के। और क्या करते हैं फैशन में, पायल पहनते हैं। पायल पहनो लेकिन किसके, उमंग उत्साह के पायल पहनो। जीवन में उमंग चाहिए। जिसके जीवन में उमंग नहीं वो मुर्दा है। तो इसलिए पायल कौन से पहनना है, उमंग के। हाँ, मुरली सुनने का, क्लास में जाने का, कुछ सीखने का उमंग चाहिए। नहीं तो क्या, कईयों को बच्चों में उमंग नहीं होता। मम्मी कहेंगे बेटा 11 बजे स्कूल में जाओ, तो जबरदस्ती करके जा रहे मुर्दे की तरह। लेकिन नहीं, उमंग के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए पायल कौन से पहने, उमंग के। और क्या करते हैं, चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली और पाउडर भी लगाते हैं। दुनिया में लाली लगाओ लेकिन कौन सी, मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। आपका चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। किसी ने लाली लगाई चेहरा मरा पड़ा है, नाराज है, हाँ अच्छे लगेंगे। इसीलिए मधुर मुस्कान की लाली लगानी। तो ये है हमारी ब्यूटी। इसलिए चार बातें याद रहेगी। अगर अच्छे बच्चे बनना है, संगत अच्छी रखनी है, सिनेमा टीवी से दूर रहना है, व्यसन से दूर, फैशन से दूर, और पांचवी बात है जो हमें धारण करनी है वो है सहन शक्ति का गुण। अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है तो कौन सा गुण धारण करना है, सहन शक्ति का। लेकिन आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। पहले जमाने में स्कूलों में अगर बच्चे को कुछ आता नहीं था स्कूल में तो बच्चों को छड़ी मारी जाती थी। लेकिन आजकल अगर छड़ी मारेंगे तो स्कूल में आएंगे नहीं। आजकल तो कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन छड़ी क्यों मारी जाते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन है। हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं और जब छड़ी मारी जाते हैं तो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं और वो बच्चा होशियार हो जाता है, वो दोबारा गलती नहीं करता। और इसीलिए छड़ी मारी जाती थी। और इसीलिए कहावत बनी थी, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आजकल ना छड़ी लगते ना विद्या आते, क्योंकि आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। पहले जमाने में कान पकड़े जाते थे। क्यों पकड़े जाते थे, क्योंकि कान खींचने से कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो जब खींचते हैं तो बुद्धि खुल जाते हैं, इसीलिए कान खींचे जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है, इसीलिए ना छड़ी मारने देते ना कान खींचने देते हैं। और इसीलिए बुद्धि को खोलने के लिए उनको ट्यूशन लगाना पड़ता है, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कौन सा गुण धारण करना है, सहन शक्ति का। अगर सहन शक्ति का गुण आप स्कूल से सीखेंगे नहीं या जीवन में नहीं सीखेंगे तो भविष्य में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आज समाज में या देश में जो भी समस्या है उसका कारण क्या है, सहन शक्ति की कमी। आज अखबार में न्यूज छपी आती है, कोई बहू थी, अपने सास ने उसको कुछ बोला, उसने सहन नहीं किया, केरोसिन डाल के जलाया। आते हैं ना अखबार में न्यूज। वो बहुत छात्रा थी, उसने सभी लेसन सीखे लेकिन क्या नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। आज कई पेपर में आता है किसने किसी का मर्डर किया, किसने गाली की उसको सहन नहीं हुआ, उसको भी गाली दी, झगड़ा हो गया। इसी तरह सभी बातों का कारण है सहन शक्ति की कमी। कुछ दिन पहले हमारे आबू रोड में एक घटना घटी थी। एक डॉक्टर थे और उनके खिलाफ क्या हुआ, अखबार वालों ने कुछ गलत बातें लिख दी। तो जब गलत बातें लिख दी, दूसरे दिन जब न्यूज पढ़ी उस डॉक्टर ने, तो न्यूज पढ़ते ही उसको सहन नहीं हुआ और क्या क्या उसने जहर खाके मर गए। तो आज ये घटनाएं क्यों हो रहे हैं, सहन शक्ति की कमी। आज किसी को बीमारी होती है उसका कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए सहन शक्ति का लेसन हमें बचपन से ही सीखना है। अगर ये गुण ही आपके जीवन में आएगा, आप समाज में कहीं भी जाकर के कहीं भी सुख शांति से रह सकते हैं। जिसके पास सहन शक्ति का गुण है उसके पास बाकी सभी गुण आ सकते हैं। जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास शांति है, जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास धैर्यता का गुण है, उसके पास एकाग्रता का गुण है, उसके पास गंभीरता का गुण है, अंतर्मुखता का गुण है। कई गुणों का आधार है कौन सी शक्ति, सहन शक्ति। इसलिए अगर जीवन को महान बनाना है तो क्या करना है, सहनशील बनना है। तो सहन शक्ति को हम डेवलप कैसे करें? अगर समझो कोई गाली देता है तो क्या होता है, सहन नहीं होता, और जिसको सहन नहीं होता उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से दिमाग गर्म होता है ठंडा होता है गर्म। और जिस बच्चे का दिमाग गर्म होता है उसकी स्कूल की पढ़ी हुई बातें सुनी हुई बातें उसको याद नहीं रहेगी, उसकी मेमोरी पावर कम हो जाते हैं। अगर मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो सहनशील बनना है। गर्म तवे पर पानी डालो तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसी तरह जिसका दिमाग गर्म रहता है, टीचर उसके समझो क्लास में बैठा है वो, और टीचर उसके दिमाग में वो बातें डाल रहा है, वो याद नहीं रहेगी। और जब उसी लेसन का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे। इसलिए मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सहनशील बनना है। और इसलिए कहावत भी बनी है, और जो सहनशील बनेंगे वो कभी बीमार भी नहीं होंगे। इसलिए कहावत बने, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। कब, जिसका पाव गरम चाहिए पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल क्या होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसीलिए दिमाग को कैसे रखना है, ठंडा। और इसके लिए कौन सा गुण चाहिए, सहन शक्ति का। तो कोई गाली देता है तो आप गाली अच्छी होती है बुरी होती है, तो बुरी चीज को लो ही नहीं, हम क्या करते ले लेते उसको। एक महात्मा गांधी की आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी यात्रा कर रहे थे कहीं समुद्र जहाज से, तो यात्रा करते करते एक अंग्रेज भी था साथ में, तो महात्मा गांधी शांति से बैठे थे। उस अंग्रेज ने क्या किया, कुछ बहुत सारी बातें लिखी कागज में, और वो कागज महात्मा गांधी को देके वापिस अपने जगह पर बैठ गए। तो महात्मा गांधी ने उस कागज को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसकी जो पिन थी वो निकाल करके अपने धोती को लगाई और वापिस कागज उस अंग्रेज को दे करके फिर शांति से बैठ गए। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी के उसको उस पढ़ने के बाद कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी बहुत सारी महात्मा गांधी के लिए। तो जाकर के महात्मा गांधी को पूछा, आपने इस पढ़ा आपका आपको कुछ इसका असर नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए मैंने रख दी, बाकी कागज मेरे कोई काम का नहीं इसलिए मैंने आपको रिटर्न कर दी। तो जो चीज हमारे काम की नहीं उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई गाली देता है उसको ले लेते हैं। अगर कोई गटर में गिरवी चीज आपको कोई देगा आप लेंगे, हाँ? तो इसी तरह कोई गाली देता है उसको लेना ही नहीं, लेकिन हम ले लेते हैं फिर पश्चाताप करते हैं। तो सहन शक्ति के गुण को अपनाने के लिए क्या करो, नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, हाँ? आम के पेड़ को आम लगे हैं, और जब आप एक पत्थर मारते हैं आम का पेड़ क्या करता है, आम देता है। आपने क्या मारा उसको? पत्थर। उसने क्या दिया? आम। उस आम के पेड़ ने पढ़ाई कितनी पढ़ी? आठवीं नवीं दसवीं में स्कूल में जाता है। हमने उसको पत्थर मारा, उसने आम दिया। आज हमें कोई गाली देता, हम वापिस दो तीन गाली देते, तो हमारे से भी अच्छा कौन हुआ फिर? आम का पेड़। इसीलिए आम का पेड़ राजा बना है। राजा क्यों बनाए? सहन शक्ति के कारण। इसीलिए आज से हमें इससे सीखना है, आम से पेड़ से। अगर हमें कोई गाली देते हैं, हम भी उसको फल देना है। कौन सा? कोई गाली देता उसको, भाई थैंक यू, धन्यवाद, हाँ क्या कहेंगे? हाँ जोर से बोलो, हाँ बोलेंगे, भले मुख से नहीं बोलो लेकिन अंदर से, या मुख से भी बोलेंगे तो गाली देने वालों को भी लगेगा मैं इसको गाली दे रहा हूं और ये थैंक यू बोल रहा है, दोबारा गाली देने की भी शर्म आएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी हमें एक बात सिखाई, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे करो, लेकिन हम क्या करते, दूसरे ने एक बार हम दो मारते हैं कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज हमारे भारत में जितने भी महान पुरुषों के गए, किस आधार से महान बने? सहन शक्ति के आधार से। दूसरे का मर्डर करके बदला लेके महान नहीं बने। इसीलिए हमें यहां से सीखना है ये सहन शक्ति का गुण। और उसके लिए युक्ति कौन सी बताई? निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। एक आपको संत तुकाराम महाराज की एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाते हैं इसी संदर्भ में। कहते एक संत तुकाराम महाराज थे, ये महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे। तो भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने क्या किया, उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत तुकाराम महाराज जी के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर सभी सब्जियां, और उनका मुंह काला करके उसके बाल उतार दिए, और उस संत को क्या क्या गधे पर बिठा दिया, और क्या क्या गली गली में उसको घुमाया। तो क्या इज्जत हुई? बेइज्जती उसकी? बेइज्जती। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को घर से बुलाया और कहा इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसीलिए ऐसा किया। जब उसके पत्नी ने देखा मेरे पति को ऐसा किया, उसको सहन नहीं हुआ, सबको गाली देना शुरू करते। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दिए, और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, आज ये लोगों ने क्या किया, मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए, इनको गाली क्यों दे रहे हैं, और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके क्या किया है, हल्दी लगाया औषध किया, इनको गाली मत देना। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी क्या निकाल दी है, बारात निकाल। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अंदर जाकर के एक बंदूक लेकर के जिन्होंने ऐसा किया तो उनको मार दिया, मारा उन्होंने, उस निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। इसीलिए वो संत बन गए। संत किस आधार से बने? सहन शक्ति के आधार से। आज हमारे ब्रह्मा बाबा दादिया इनकी कहानियां सुनते ना, इतना ही नहीं बाबा भी महान, शिव बाबा भी भगवान बना। क्यों? बाबा ने भी क्या किया, हमने उसको कितना गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में बिल्ली में टिक्कर में, तो बाबा ने ये किया, गाली देने वालों को बाबा ने गले लगाया। इसीलिए बाबा इतना महान पूजनीय बना। तो इसीलिए अगर हमें पूजनीय बनना है, महान बनना है, तो कौन सा गुण अपनाना है? सहन शक्ति का। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का गुण है सहन शक्ति। और एक आपको स्टोरी सुनाते, कहते एक संत एकनाथ महाराज थे। स्टोरीज के नाम लिख करके लेना ताकि आपको स्टोरी सदा याद रहेगी, केवल टाइटल भी लिखेंगे तो भी याद रहेगी। एकनाथ महाराज स्नान करने में, गंगा स्नान करने में गए थे, और जब स्नान करके वापिस आए, एक व्यक्ति ने पान खाकर के उनके ऊपर थूक दिया, तो उन्होंने कुछ ही नहीं बोला, वापिस गए फिर स्नान किया एकनाथ महाराज, फिर दोबारा थूक दिया, फिर भी उन्होंने कुछ ही नहीं बोला, फिर स्नान करके आए। 7 बार वो एकनाथ महाराज स्नान करते गए, वो व्यक्ति थूकता गया। 8वीं बार जब वापिस आ रहे थे, उस व्यक्ति को लगा मैं इतना बार थूक रहा हूं लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे, ये कोई महान संत होंगे, और जाकर के उसके चरणों में छुआ और कहा कि महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार गंगा में स्नान करके पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण मैंने 8 बार गंगा में स्नान करने का आज के दिन पुण्य जमा किया, इसीलिए आपका बहुत धन्यवाद। आज हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर कर मारना शुरू करेंगे, कहेंगे देखो सर देखो मेरे ऊपर थूका, इन्होंने झगड़ा करेंगे। तो आज जो महान पुरुष बने किस आधार से? सहन शक्ति से। इसीलिए सहन शक्ति का गुण अपनाना है। अगर आपके पास सहन शक्ति का गुण है, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो भी आपको कोई कुछ भी बोलेगा तो भी आप चल सकेंगे। जब मैं शुरू में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आया, तो उस समय आपके जैसे मैं स्टूडेंट था, नवी कक्षा में था, उस समय ज्ञान में आया था। तो जब मैं ज्ञान में चलता था, मुझे सभी बच्चे लोग चिढ़ाते थे, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते वहां जाने के बाद फिर बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, फिर आप बाहर की दुनिया कैसे देख सकेंगे, अभी तो आप अच्छे हैं लेकिन बाद में आपका ऐसा हो जाएगा, बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी याद रखी थी, उसी स्टोरी ने मुझे बहुत अच्छा बचाया और उससे मेरे अंदर सहन शक्ति का गुण डेवलप हो गया। वो स्टोरी आपको सुनाते, कहते गुलाब का फूल था और उसी के नीचे एक पत्थर था, नजदीक मंदिर था, तो रोज लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ करके गुलाब के फूल को तोड़ते हैं और मंदिर में डालते हैं। तो गुलाब का फूल अच्छा देखने में सुंदर था, रोज चिढ़ाता है किसको, वो पत्थर को चिढ़ाता है, कहता है तुम तो काले काले हो, तुम देखने में अच्छा नहीं हो। कौन चिढ़ाता है? फूल चिढ़ाता है पत्थर को, पत्थर तो भी क्या करता है, सहन करता है। तो एक दिन एक व्यक्ति वो पत्थर के ऊपर बैठ करके गया, फूल और उसको चिढ़ाता है, कहता है वो व्यक्ति आएगा तुमको लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रहा है उसके नीचे डालेगा, तो भी वो सहन करता है। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पत्थर को लेके गया और उसके ऊपर छनी रतुड़ी लगाता है, तो भी वो सहन करता है, उसकी सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति बनने के बाद उसको एक मंदिर में रखा गया और मंदिर में रखने के बाद उसी फूल को कोई तोड़ करके उसके चरण में डाला, तो मूर्ति बोलते मुझे पहचाना, तो फूल बोलते नहीं पहचाना, कहा कि मैं वही पत्थर हूं जो आप मुझे रोज चिढ़ाते थे। तो देखो वो पत्थर क्या से क्या बन गया, क्यों बन गया, सहन शक्ति के आधार से। तो इसी तरह जब मैं स्कूल में था, इस कहानी को याद रखता था, मैं सोचता था अभी जो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, एक जब मैं भविष्य में बाबा का ज्ञान सुनूंगा, तपस्या करूंगा, योग लगाऊंगा, तो हनुमान बनूंगा, तो यही बच्चे आकर के मेरे चरणों में झुकेंगे। तो उस समय जब मुझे चिढ़ाते थे मैं हंसता था, तो सभी बच्चे बोलते थे हम इतना आपको चिढ़ाते हैं, आपको आप हंसते क्यों, आपको इसकी फीलिंग नहीं होती। मैं बोलता वो बाद में बताऊंगा, अगर उसी समय मैं बताता मैं हनुमान बनने वाला, ये बोलेगा पूरा इसको अभी ये हनुमान बनने वाला है। और सचमुच आज जब मैं गांव में जाता हूं, तो जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे, कोई उसमें शराबी बनाए, कोई कैसा जीवन बनाए, जब जाता हूं तो कहते सचमुच आपका जीवन तो बहुत धन्य हो गया, हम ऐसे रह गए। तो कहने का मतलब अच्छे बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, बिना सहन करते कोई अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए जीवन में इस गुण को पक्का करना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन की तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए कितनी बातें बताई, पहली बात बताई संगत अच्छी हो, दूसरी बात बताई सिनेमा टीवी से दूर रहे, तीसरी बात बताई व्यसन, चौथा फैशन इसे दूर, और पांचवी बात बताई सहन शक्ति का गुण। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए और आपको तीन बातें सुनाएंगे। छठी बात है, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है, हमारी वाणी कैसी हो, मीठी। जितनी हमारी वाणी मीठी है उतना हम अच्छे बच्चे कहेंगे। लेकिन वाणी किस आधार से बनती है, जैसे हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इसीलिए कहते हैं ना जैसा पानी पियो वैसी क्या बन जाते हैं, वाणी। पानी मतलब कौन सा, जैसा हम ज्ञान पढ़ते हैं ज्ञान सुनते हैं वैसे हमारी वाणी बन जाते हैं, जैसे हमारा सोच चलता है, जैसे संकल्प आते हैं वैसी वाणी बनते हैं। इसीलिए हमारी वाणी अच्छी हो, अगर आपने वाणी अच्छी नहीं बनाई आपको कोई भी पसंद नहीं करेंगे। आप कितने पढ़े हैं या आप क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं, आपके वाणी से पहचाने जाएंगे, बोल से पहचाने जाएंगे। बोल से महाभारत बना, बोल से ही रामायण बना, बोल से मर्डर हो सकते हैं। इसीलिए हमें बोल बड़े मीठे बोलने हैं, भगवान ने मुख इसीलिए दिया है अच्छे बोलने के लिए। अगर मुख से कड़वे वचन बोलेंगे कोई ना कोई जन्म में गूंगा बनना पड़ता है, कर्म सिद्धांत है। कान किस लिए दिए हैं? क्या सुनने के लिए? अच्छी बातें। अगर बुरी बातें सुनेंगे कोई ना कोई जन्म में बहरा बनते हैं। हाथ किस लिए हैं? अच्छे कर्म के लिए। अगर इसका दुरुपयोग करते हैं लूला बनते हैं। उसकी भी एक कर्मों की कहानी आपको सुनाते हैं, शंकर पार्वती की। कहते हैं एक बार शंकर और पार्वती विमान में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने एक जगह पर क्या देखा, एक तालाब में बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा नहीं नहा रहा था, वो किनारे पर बैठा था। तो पार्वती शंकर जी को कहते हैं, ये बच्चा क्यों नहीं नहा रहे, बाकी सभी नहा रहे। पार्वती ने कहा, तुमको बोला ना इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, ये सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब अपने आप में ठीक है। नहीं नहीं बता बोले क्यों नहीं नहा रहे। तो जिज्ञासा थी उनकी, इसीलिए कहा कि ठीक है, कहा कि इस बच्चे को हाथ नहीं इसीलिए वो नहीं नहा रहे, क्योंकि तैरने के लिए क्या चाहिए, हाथ और पांव चाहिए। तो कहा कि शंकर जी को कहते कि आपने इसको हाथ क्यों नहीं दिया, हाथ दो नहीं तो मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी, क्योंकि पार्वती जिद्दी थी। तो शंकर जी ने उसको वरदान दिया, उस बच्चे को हाथ आए, वो तैरने के लिए गया। लेकिन जब तैरने के लिए जाता है तो क्या करता है, जो बच्चे ऑलरेडी तैर रहते हैं उनको डुबाना शुरू करता है उसी हाथ से। जब डुबाना शुरू करता है, एक दो बच्चा तो डूब करके मर भी गया, बाकी सभी वापिस गए। और दोबारा जब शंकर पार्वती जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, सभी बच्चे किनारे पर देखा और एक अकेला नहा रहे। तो पार्वती ने कहा कि बच्चा क्या इसे रूठ गए, बाकी जो बच्चे क्या इसे रूठ गए। शंकर जी ने कहा, तुमको बोला ना सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, इसी बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत बच्चे को डुबाया था और इसीलिए मैंने उसको हाथ नहीं दिया था, आपने कहा हाथ दो मैंने दिया, तो वही काम कर रहा है जो पिछले जन्म में करता था। तो कहने का मतलब, हमें अपनी इंद्रियों का क्या करना है, सही रूप में प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा का ज्ञान भी क्या है, इंद्रियों पर संयम रखना। लेकिन इंद्रियों पर संयम कौन रह सकता है, जो बाबा को याद करता है। और आजकल स्कूल कॉलेज में हमें बाबा की याद की मुरली सुनना और योग लगाना बड़ा जरूरी है, अन्यथा हमारी इंद्रिया हमारे संयम पर नहीं रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, वाणी मीठी बोलने के लिए रोज ज्ञान सुनना बड़ा जरूरी है। रोज हमें सेंटर पर जाकर के बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो हमारी इंद्रिया हमारे संयम में आएंगी, शीतल बन जाएगी, हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और जो संगम में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसीलिए हमें वाणी से मीठा बोलना है। और बोलते हम किसे, किसे बोला जाता है, जीभ से। जीभ को हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तोड़ने का काम करती है। और जीभ को कंट्रोल में रखने के लिए भगवान ने क्या किया, उसको 32 पहरे वाले रखा है, 32 दांत बनाकर दिए। लेकिन जीभ क्या करते हैं, उस 32 पहरे वाला का मानती भी नहीं, बाहर आकर गाली देके फिर अंदर जाते। इसीलिए जीभ को अपने संयम पर रखना है। अब ये ज्ञानामृत में बहुत अच्छा आर्टिकल आया, जीभ प्रबंधन। जीभ के ऊपर भी हमारा प्रबंध चाहिए, संयम चाहिए। इसीलिए वाणी हमारी मीठी हो, वाणी से दुश्मन बन सकते हैं। वाणी अगर अच्छी नहीं तो कोई पसंद नहीं करेगा। और एक कहानी आपको सुनाते, कौवे की कहानी, कौवा और कोयल। कहते हैं कौवा था, वह दुनिया छोड़कर के जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़कर के क्यों जा रहे हैं? कहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं जिधर भी जाता हूं सब लोग मुझे पत्थर मार के भगाते हैं, इसीलिए कहते मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो कोयल कहते हैं, भैया तुम्हारी वाणी अच्छी नहीं, मैं तो जहां भी जाती हूं जिधर भी मुझे कोई नहीं मारता। तो इतने में कौवे की नजर कोयल के गले में जो हार था सोने का उसके पर गई। तो कौवे ने पूछा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्ग लोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था और इसी गीत के गिफ्ट है। कहता ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। उसने कहा कि जाना लेकिन अपनी वाणी सुधार के जाना। कहता ठीक है। लेकिन कौवा क्या करता है, बिना वाणी सुधारते चला जाता है, क्योंकि उसको हार लेने की लालच हो गई। और जाकर के इंद्रदेव को बोलता है, मेरी बहन आई थी और उसने बहुत अच्छा गीत गाया था, मैं उसका ही भाई हूं। उसको लगा सचमुच भाई होगा क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा था। तो सभी को बुला करके सभागृह में बिठाया और कवे को कहा कि कविता चालू करो। और जब कविता कहना शुरू करता है उसका वही आवाज था, आवाज सुनकर के सबके कान फटने लगे, वहां से भी पत्थर मार के उसको भगा दिया। तब कवे को याद आया कोयल ने क्या कहा था, कहीं भी जाओ तो वाणी सुधार के जाओ। कहने का मतलब, हमें भी अपने जीवन में अपनी वाणी को मीठी बनानी है। जितनी जिसकी वाणी मिटी है आप कहीं भी जाकर के सबके साथ एडजस्ट होकर के चल सकते हैं, नहीं तो आज एक दूसरे की बनती नहीं। क्यों? वाणी अच्छी नहीं। पर चिंतन वाले बोल, निंदा करने वाले बोल, ग्लानी करने वाले बोल कभी नहीं बोलना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए ये छठी बात बताई। सातवीं बात आए, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है हमें गुणग्राही बनना है, सभी से गुण सीखना है। वास्तव में गुण कई बाजार में मार्केट में नहीं मिलते। आपके गांव में कोई दुकान है गुणों का? कहो कि हमको 2 किलो गुण चाहिए, गुण के बजाय आपको गुड़ देंगे, गुण नहीं मिलेंगे। गुण आपको ग्रहण करने पड़ते हैं। हर इंसान में गुण है, प्रकृति में गुण है, और गुणों का सागर कौन है? शिव बाबा है। जितना उसको याद करेंगे गुण हमारे अंदर आएंगे, और इसीलिए हमें गुण ग्रहण करना है। देखो हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ, देखा है चित्र? सरस्वती का चित्र किसने किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी ने देखा, हाथ नीचे करो। अच्छा सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? मोर के ऊपर बैठी है। कोई चित्र में दिखा है कि कौवे के ऊपर सरस्वती माँ बैठी है? नहीं। क्यों नहीं बैठी? आपको कौवा पसंद आता है? हंस? हंस। कौवा पसंद क्यों नहीं आता? वो काला है। अच्छा और क्यों पसंद नहीं आता? वाणी ठीक नहीं। अच्छा और क्यों पसंद नहीं आता? उसकी नजरों में चंचलता होती है इसलिए पसंद नहीं आता। और क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि कौवा क्या करता है? गंदगी खाता है। और वास्तव में देखा जाए तो कोई हंस के ऊपर भी सरस्वती माँ बैठती नहीं थी। वो चित्र में दिखाया जाता है एक सागर क्या या तालाब है, सरस्वती हंस उसके ऊपर तैर रहे पानी के ऊपर और सरस्वती माँ उसके ऊपर बैठी है। अगर आप में से कोई बच्चा भी जाकर के हंस के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और सरस्वती माँ का वजन तो 50-60 किलो तो होगा ही, 10 किलो तो बिना ही होगा। अगर वो बैठेगी तो जल्दी डूब जाएगा। तो वास्तव में प्रतीक है, संसार एक सागर है, और इसी सागर में अगर सरस्वती को ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हंस बनना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हंस बनना है, तब ज्ञान हमारे बुद्धि में आएगा। और हंस बनने के लिए हमें क्या करना है? गुण ग्रहण करने हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए देखो बाबा ने सभी को हंस बनने के लिए ड्रेस कौन सा दिया है? व्हाइट। तो केवल ड्रेस ही व्हाइट नहीं, लेकिन अंदर और बाहर। नहीं तो कोई दीदी सामने नहीं है और दीदी को कहेंगे वो दीदी ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई तो क्या कहेंगे? दीदी अभी हम आपको याद कर रहे थे। उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? कौवा। मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं। तो ये ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो अंदर बाहर सोचे है, टीचर के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। इसीलिए ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहीं पूरा करेंगे। तो ये 7 बातें आपको सुनाई। अगर ये 7 बातें भी आप धारण करके जाएंगे तब भी अच्छे बच्चे बन सकेंगे। और लास्ट में एक कहानी सुना करके फिर पूरा करेंगे। लास्ट में एक कहानी सुनाएंगे, क्योंकि जो भी बातें आपने सुनी क्या छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे? इसको लेके जाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, कहने में तो कहेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में जिसके जीवन में वही मान है। नहीं तो हम स्कूल में प्रेयर करते ना, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, सारे देश पर मेरा प्रेम है, लेकिन अंदर क्लास में झगड़ा करना शुरू करेंगे। इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा करो कि भारत मेरा देश नहीं या मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, आज एक को मैं मार के छोड़ूंगे। मैंने ऐसा बोलना चाहिए, मैंने कहते कुछ और करते कुछ, ऐसा नहीं। उसको कहेंगे तोताराम। इसीलिए हमें शिक्षा को आचरण में लाना है। कहते एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी? 3। तीनों का कलर एक जैसा, तीनों की साइज एक जैसी, तीनों की पेंटिंग एक जैसी, सब कुछ एक जैसा, लेकिन कीमत अलग अलग। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रूपये, दूसरी की कीमत थी 200 रूपये और तीसरी की 300। एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए जाता है, कहते कि कितने में? कहते 100 रूपये, दूसरी 200 और तीसरी 300। कहा कि क्यों भाई, एक जैसे है सब कुछ एक जैसा, कीमत अलग क्यों? कहते मैं बताता हूँ। उसने 100 रूपये वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रूपये डाला, दूसरे कान से निकल गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 100 रूपये। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रूपये डाला, मुख से निकल गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 200 रूपये। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रूपये डाला और पेट में चला गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 300। भले दिखने में एक जैसे है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इसकी विशेषता अलग अलग है, इसीलिए उसकी कीमत अलग अलग है। तो आप कितना रुपए वाले लेंगे? 300। आप सभी भी दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, ना सब कुछ एक जैसे, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग है। कोई 100 रुपए वाले है, कोई 200 रुपए और कोई 300। जो ज्ञान की बातें सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं उसकी कीमत 100 रुपए, जो सुन करके मुख से वर्णन करेंगे उसकी कीमत 200 रुपए, और जो सुन करके पेट में डालेंगे उसकी कीमत 300। और 300 रुपए वाला सत्युग में आएंगे, 200 रुपए वाला द्वापर में आएंगे, त्रेता में आएंगे, और 100 रुपए वाले कहां आएंगे? द्वापर में आएंगे। इसीलिए कहां आना है? सत्युग में आने के लिए कितना रुपए वाला बनना है? 300 रुपए वाला बनना है। और 300 रुपए वाला बनने के लिए जो भी आपको 6-7 बातें सुनाई, तो क्या चेक करना है? जो भी आपको 6-7 बातें सुनाई उसको जीवन में लाएंगे, और जो भी कहानियां सुनाई वो कहानी को याद रखेंगे, तब आप सभी क्या बनेंगे? अच्छे बच्चे बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई का। आप बच्चों की ओर से एक हाथ की ताली से हम उनका धन्यवाद करेंगे।